नमस्कार, मार्गदर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ बिजनेसमैन यहाँ पर उपस्थित है जो कि हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस के चक्कर में पड़े रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। इसीलिए उनके मन में कई सवाल भी उठते हैं कि जिंदगी को कैसे अच्छा बनाए, कैसे टेंशन फ्री करे। इसी के लिए यहाँ पर कुछ सवाल लेके हमारे पास उपस्थित हुए हैं। उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ आज उपस्थित है राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कमलेश दीदी। आइए उनका स्वागत करते हैं और उनको क्वेश्चन भी पूछते हैं, आंसर भी खोजते हैं। दीदी नमस्कार, हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। दीदी, जैसे मैंने पूछा कि बिजनेसमैन जैसे होते हैं हमेशा उनका बहुत ही टेंशन रहता है, क्योंकि ये कोई एक जॉब नहीं है कि करके चले और किसी के लिए कर दिए चले अपना ड्यूटी खत्म। ये अपना खुद का बिजनेस है, खुद का मालिक को खुद होते हैं। तो क्या ऐसे है कि ये लोग का अगर ऊपर सबसे बड़ा मालिक के साथ कनेक्शन बन जाए तो फिर इनका आसान हो जाएगा, परेशानी से वो बच सकते हैं?
ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में हार्दिक स्वागत है। आज संसार के अंदर देखा जाए तो बिजनेसमैन और उद्योगपतियों का बहुत बड़ा सहयोग है और बहुत अच्छा महत्वपूर्ण उनका स्थान है। गांव से लेकर शहर तक, घर से लेकर दफ्तर तक, जिसको जो चीज की जरूरत पड़ती है वो जो उद्योगपति और बिजनेसमैन के पास भागता है। देखा जाए तो संसार के लिए बिजनेसमैन जान है और बिजनेसमैन और उद्योगपति ही संसार में कल्याण का काम भी करते हैं। धर्मशाला बनवाते हैं, कुआ खुदवाते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, स्कूल भी बनवाते हैं, प्याऊ लगवाते हैं गर्मी के दिनों में, बहुत सार्वजनिक कार्य भी करते हैं। लेकिन वर्तमान समय बिजनेस के अंदर जो उनके ग्राहक हैं या उनके कर्मचारी हैं, आपस में सद्भावना और स्नेह न होने के कारण उनका तालमेल नहीं मिलता है और वो सिर्फ इसी में रहते हैं। बहुत होड़ भी होती है, कंपटीशन होती है बिजनेसमैन के अंदर कि मैं उससे ज्यादा कमाऊं, मैं उससे ज्यादा कमाऊं। ऐसा ही लगता है कि सिर्फ पैसा कमाना ही उनका धंधा है। सिर्फ लिख लेते हैं दीवार पर और अपनी किताबों में शुभ और लाभ, लेकिन देखा ऐसा जाता है कि शुभ अशुभ में बदल गया है और लाभ लोभ में बदल गया है और राम राम की जगह सब दाम दाम करते रहते हैं। अगर हो सकता है कभी थोड़ा बहुत राम नाम भी लेंगे तो उसमें भी उनका वही स्वार्थ रहेगा कि मैं कैसे उससे बड़ा बनूं, फिर और उससे बढ़ूं। जितना पैसा कमाता है उससे लगता है इससे और दुगना हो और चौगना हो, उसकी आवश्यकता कभी घटती नहीं है, ऐसा देखने में आता है। तो उसके लिए जो व्यापारी वर्ग है उनको बहुत कुछ मूल्यों की जरूरत है। व्यापारी को थोड़ा कहते हैं व्यापारी का व्यवहारी व्यापार है और व्यापारी का बोल ही व्यक्तित्व है। तो व्यवहार ऐसा होना चाहिए जो ग्राहक उसका अपना बने, आपके ऊपर ग्राहक का और ग्राहक का आपके ऊपर विश्वास बैठ जाए। ये नहीं कि आप अपने और किसी कार्य में व्यस्त हैं, ग्राहक आया लेकिन वो अपने व्यापार की बातें दूसरे से कर रहे हैं तो ग्राहक लौट जाएगा और सारा दिन आप बैठे रहेंगे, लेकिन अब आपने अपने आलस्य के बस या किसी भी कारण से व्यापारी के बातचीत कर्म के कारण ग्राहक वापस चले जाएंगे तो नुकसान तो अपना होगा। तो उसका अटेंशन चारों तरफ होना चाहिए, उसको बहुत व्यापार कुशल होना चाहिए, उसको पहचान होनी चाहिए अपनी भी और ग्राहक की भी कि वो क्या चाहता है, उसका मेंटलिटी को उसे पहचानना चाहिए।
तो हम अभी लेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले पूछने वाली है मिसेस जमुना जाजोरिया।
दीदी ध्यान लगाने की बहुत चेष्टा करती हूँ, ध्यान नहीं लगता है। दूसरी बात, भगवान में बहुत विश्वास है, भगवान का नाम लेना चाहती हूँ, लेती भी हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी परेशानियों की वजह से मन भटक जाता है, विश्वास थोड़ा डावाडोल हो जाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए?
भगवान में आप कितना भी ध्यान लगाओ, लेकिन भगवान का जब तक ठीक ठिकाना नहीं मालूम है तो वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। आज मेरा आपसे बहुत प्यार है, लेकिन आपके घर का पता ही नहीं है, तो मैं आपके घर तक नहीं जा सकूंगी और गली गली में भटकती रहूंगी, दूसरे से पूछती रहूंगी। ठीक इसी प्रकार मनुष्य का मन और बुद्धि भटकता है, जिसने जो कहा वो करता रहता है, आंख बंद करके ध्यान भी करता है, मन में राम राम भी करता है, सब कुछ करता है, पर मन चंचल होता है। मैंने यहाँ तक देखा है कि इधर पूजा कर रहे हैं, उधर एक पोता आ गया, बच्चा आया, उसको एक थप्पड़ लगा दिया कि जा भाग जा यहाँ से, इधर कुछ काम हो रहा है फिर उधर से उसको भगा दिया, और मन एकाग्र नहीं है। तो मन की एकाग्रता जब आएगी, जब आपको परमात्मा का ठिकाना ठीक मिलेगा, और उसका ठिकाना आपने गीता पढ़ी है, गीता में लिखा है कि जब धर्म की ग्लानि होती है तब भगवान सृष्टि पर आती है, अवतरित लेती है। तो धर्म की ग्लानि का समय तो अभी चल रहा है, अभी परम पिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर एक साधारण व्यक्ति के तन में बैठकर अपना पता स्वयं बता रहे हैं कि मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा रूप ये है, मेरा घर ये है, और आप ये हो। जब उस सारे पते को आप जान जाएंगे तो आपका मन की एकाग्रता में कोई देरी नहीं लगेगी।
मेरा प्रश्न मेरा बच्चा की तरफ से, मतलब आजकल वो लोग खाली मोबाइल इंटरनेट, कहीं हम लोग के साथ जाना नहीं चाहते, कहीं मिलना जुलना फैमिली में किसी घर जाना नहीं चाहते, बात नहीं सुनते हम लोग की, बस मोबाइल दे दो बस दिन भर उसी में ही, इसी थोड़ा परेशान रहते हम लोग।
आप पहले अपने मन को रास्ते पर ले आइए, और आप थोड़ी सी मूल्य और आध्यात्मिकता को अपने जीवन में लाने की कोशिश करिए। जब आप अपने जीवन में स्वयं की पहचान प्राप्त कर लेंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैं बोलने चलने वाली शक्ति क्या हूँ, और उसके निकल जाने के बाद तो इस शरीर को कोई पूछता नहीं है। जब आपको अपने आप की समझ पहचान और ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, और उसी ज्ञान को और समझ को और पहचान को और परमात्मा के ठिकाने को जब आप बच्चों को धीरे धीरे समझाने की कोशिश करेंगे प्रेम प्यार से, तो वो जरूर समझेंगे। बाकी तो आज का संसार ही ऐसा है, मोबाइल के बिना कोई चलता नहीं है, क्योंकि आपने सब सामग्री उनको जुटाई हुई है, उनको टीवी दिए देखने के लिए, फिल्म के लिए मना नहीं है बचपन से, उस रास्ते में जुड़ाया हुआ है, अब वो कैसे छोड़े। और बचपन से अगर वो ऐसे मोल्ड होकर चलते अच्छे रास्ते में, आप उनको लाते, आप खुद भी आते, तो जरूर वो बदलते। अभी भी समय, अभी भी आपका बच्चे बात नहीं मानते हैं, परंतु हमारे पास बहुत युवा शक्ति भी है। अभी इससे पहले युवाओं का यहाँ पर वर्ग इकट्ठा होगा, तो ऐसे ऐसे युवक जवान वो यहाँ आकर के चेंज होता, जो माता पिता उनको कहते नहीं है, परंतु वो माता पिता को कहते हैं कि आपको वहाँ पर जाना चाहिए,
नहीं आना पड़ेगा, पहले उसके बाद बच्चे आएंगे,
तब तो वो आपकी बात मानेंगे, नहीं तो कहेंगे पहले पापा आप जाओ, हम तो अभी बूढ़े नहीं है, आप तो वानप्रस्थ अवस्था में जा रहे हैं, आप जाओ तब पीछे हम चले जाएंगे।
अभी तो बच्चे ऐसा भी बोलते हैं कि अपने जमाने में तो आप सब कुछ कर लिए, अब अभी जाके आप जा रहे हैं ना भगवान के पास, भगवान का रास्ता खोज रहे हैं, अपने बचपन में तो मजा सब कर लिए, मेरे बच्चे बोलते हैं।
हाँ।
और हमको अभी बचपन से क्यों बोल रहे हैं कि वो सब करें, हम भी आपकी तरह उम्र हो जाएगा, हम भी करेंगे।
तो वो समय अब आएगा कि नहीं, क्या पता है? हाँ। कुछ पता नहीं। कोई जीवन का ठेका तो नहीं ले सकता है, कोई मृत्यु का ठेका ले सकता है, कोई क्या है कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब कर लूंगा।
अभी दीदी और एक क्वेश्चन लेंगे जो पूछने वाले हैं सुरेश कुमार अग्रवाल।
मेरा सवाल है, अध्यात्म जानने के लिए गुरु करना जरूरी है कि नहीं?
जरूरत नहीं है, आध्यात्मिकता अलग है और धार्मिकता अलग है। आजकल गुरु तो सबको कहते हैं, पति को भी स्त्रियां गुरु मानती है। गुरु वही है जो आपको सतगुरु का रास्ता बता दे और उससे आपका बुद्धि का कनेक्शन जुड़ा दे। गुरु माने आपको शिक्षा देने वाला। तो आध्यात्मिकता का मतलब ही आत्मा परमात्मा का अध्ययन। जब आत्मा परमात्मा के अध्ययन में आ जाएंगे तो गुरु की क्या आवश्यकता है, गाइडेंस की आवश्यकता है। आपको गाइडेंस चाहिए कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उससे मैं कैसे अपनी बुद्धि का कनेक्शन जोड़ूं और कौन सी विद्या सीखूं जिससे घर बैठे भी मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूं। वो तो आपको जो आध्यात्मिक स्कूल होगा वहीं से मिल सकता है। स्कूल में तो सब मास्टरों को भी गुरु कहा जाता है, कहना कोई बड़ी बात नहीं है। पर सतगुरु तो एक ही है जो कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है। जिसने शरीर धारण किया है वो गुरु नहीं बन सकता है, सतगुरु नहीं बन सकता है जिसने शरीर धारण किया है। लेकिन जो सतगुरु है वो निराकार है, उसको अपना शरीर नहीं है। उससे जब आप कनेक्टेड हो जाएंगे तो आपको उस देहधारी गुरुओं की क्या आवश्यकता है।
लेकिन कनेक्शन लाने के लिए कोई तो रास्ता तो होगा ना,
वो तो गाइडेंस देता है ना परमात्मा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम भी अभी तक पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाला वो है। जो हम पढ़ रहे हैं वो इनको बता सकते हैं, जो ये पढ़ेंगे वो औरों को बता सकते हैं।
तो उसके लिए वो क्या करे?
पढ़ाइए, वो इस आध्यात्मिक स्कूल में ज्वाइन करें,
बस वही हम जानना चाहते हैं।
और उनको कोई गुरु की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ की गाइडेंस लें कि आप गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बिना मनुष्य देहधारी गुरु के आप कैसे अपने मन के अंदर शांति ला सकते हैं, अपने परिवार बच्चे स्त्री सबको शांति दे सकते हैं।
अभी अमित कुमार जी क्वेश्चन करेंगे।
आध्यात्मिक के लिए मैंने शाकाहार जरूरी है, क्या विधि है?
क्योंकि अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है और मन को आप आध्यात्मिकता में जोड़ना चाह रहे हैं। कहते हैं जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी, और जैसा करेंगे संग वैसा होगा रंग। आपको मालूम नहीं है अन्न का और पानी का प्रभाव ऐसा पड़ता है कि एक संत के ऊपर प्रभाव पड़े। एक बार एक संत जा रहा था, उसे बहुत प्यास लगी रास्ते में, तो उसने एक कुआं देखा, वहां पर बाल्टी और रस्सी रखी थी। प्यास लगी, जाके कुएं से पानी खींचकर पानी पिया। पानी पीते ही उसके मन में आया कि और आगे जाऊंगा तो शायद और प्यास लगेगी, और कहीं मुझे रस्सी और बाल्टी नहीं मिलेगा तब क्या होगा, इससे अच्छा है मैं इसको ले चलूं। और वो उसको साथ में ले गया। बहुत विचार करने के बाद जब वो पहुंचा अपने स्थान पर, तो उसने मन में सोचा कि मेरे अंदर किसी दूसरे की चीज उठाने की भावना कैसे आई। अपने गुरु से पूछा, उसने कहा भाई आप वो जो कुआ था वो चोर का बनाया हुआ कुआ था, उस पर आपने पानी पिया, तो पानी पीते ही आपकी भावना आ गई कि चलो बाल्टी और ये ले चले। अब आप उससे तभी मुक्त होंगे कि आप उस जगह पे जाओ और वहां पर ही वो बाल्टी और रस्सी रख के आओ, तभी आप उससे प्राप्त करेंगे। अब मांस मछली खाएंगे, नंदन कानन में देखो जहां भी जाओ मांस किसको खिलाया जाता है, जानवरों को। तो मांस मछली तो मनुष्य का खाना नहीं है, कोई मांस मछली का भोग लगाता है भगवान को, देवताओं को। मिठाई अंदर अंदर अच्छी अच्छी चीजों का भोग लगाते हैं। तो आप जब देवता बनेंगे, अपना चरित्र श्रेष्ठ बनाएंगे, अच्छे बनेंगे, तो अन्न की शुद्धि, आहार की शुद्धि होना बहुत जरूरी है। आहार विहार आचार ये सब चीज आपके जीवन में आ जाएगा।
ओम शांति। मैं एक्चुअली ये जानना चाहता हूँ कि एक बिजनेसमैन अपने अंदर किन किन गुणों को लाने से एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता है।
उसके अंदर सबसे पहले सहनशीलता होनी चाहिए, धैर्यता होना चाहिए, नम्रता होना चाहिए। आपको मालूम है बिजनेस का, चाहे छोटा बिजनेस है चाहे बड़ा बिजनेस है, उसको बहुत मीठा बोलना चाहिए, व्यवहार उसका बहुत सुंदर होना चाहिए, तब उसका प्रभाव खरीददारों के ऊपर पड़ता है जो खरीद ले आते हैं। एक व्यक्ति बहुत गरीब भूखा, उसको कहीं से चावल मिल गए और उसने सोचा कोई ग्रोसरी के बिजनेसमैन के पास जाऊंगा, थोड़ा गुड़ मांग लूंगा। वो जब उसके पास गया और कहा थोड़ा सा भाई मुझे कुछ नहीं, गुड़ दे दो, मैं भूखा हूं, चावल बना के पेट भर लूंगा। लेकिन वो उसके ऊपर इतना चिल्लाया कि जाओ जाओ यहां तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, चले जाओ यहां से। वो चला गया चुपचाप। उसके पास मूल्य थे, गुण थे। उसने कहा भाई आप गुड़ मत दो, पर गुड़ जैसा बोलो तो सही। तो मोल का प्रभाव इतना है व्यापार के अंदर बहुत ज्यादा, वो अपनी बोल से करोड़पति बन सकता है और बोल से बिल्कुल गरीबी की स्थिति में चल सकता है, उसके अपने ऊपर है। तो उसका आचरण अच्छा होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, ईमानदारी, न्यायप्रिय होना चाहिए। ये नहीं सिर्फ लोभ लोभ लोभ, नहीं, जितना लाभ आपको आवश्यकता है उतना ही लाभ की लेने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन आवश्यकता से ज्यादा भी लोभ कर करके जमा रखते हैं उनका हालत क्या होता है, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी जोड़ रखी बर्तन में, और जब ईश्वर की चिट्ठी आई तो मन की रह गई मन। तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार एक बिजनेसमैन के शत्रु है। वो पांचों चीजें जब उसके अंदर होगी तो वो कभी ग्राहक को अपना नहीं बना सकेगा। ग्राहक को पहचानने के लिए उसको निर्णय ठीक होना चाहिए, परखने की शक्ति होनी चाहिए, उसको आलस्य नहीं होना चाहिए, चुस्ती होना चाहिए, अलर्टनेस होना चाहिए। ये सारे गुण एक बिजनेसमैन के अंदर होने से वो एक अच्छा व्यापारी और अच्छी प्रकार से लाभ लेकर के अपने परिवार को अच्छी तरह चला सकता है।
लेकिन दीदी देखा जाता है कि अगर सही रास्ता में कोई व्यवसाय करना चाहता है तो इतना सक्सेसफुल वो नहीं हो पाता है, जो गलत रास्ते में जाते हैं। जनरली सबका बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो लोग बहुत जल्दी ऊपर पहुंचते हैं। तो क्या करें, इसमें लोभ तो होता रहता है ना, नजर तो ऊपर रहता है कि सब हम ऊपर उठे थोड़ा है।
वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए, उसको लगेगा मैं झूठ बोल बोल कर पैसा कमा रहा हूँ, पर एक दिन ऐसा आएगा उसका चोर आएंगे, पैसा चोरी करके ले जाएंगे। और वो अपने बच्चों को भी यही सिखाता है। इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी है। एक व्यक्ति रोज कथा सुनने जाता था और पंडित जी कथा में ये सुनाते थे, वो एक कपड़ा अपना अंगोछा बिछा कर गमछा और बैठता था, और पंडित जी ने एक दिन कथा सुनाई कि बच्चों तुम्हें इतनी बेईमानी नहीं करनी चाहिए, जो दिन रात जब सौदा बिक्री करते हो तो डंडी मारते ही रहते हो। बाप और बेटा दोनों कथा सुनने गए। बाप के ऊपर तो कोई असर नहीं है, इधर से सुनता है उधर से निकालता है, बेटे को पहली बार ले गया, उसके ऊपर असर हो गया। और उसने जाके जब उसका बाप घर गया तो बेटे ने जो पंडित की बात थी वो ध्यान कर ली और बिजनेस को ठीक अच्छी तरह से तोला, ऐसे नहीं बिल्कुल जरा सा थोड़ा सा, लेकिन इतने में उसका बाप आ गया, उसने एक थप्पड़ मार दिया कि ये क्या कर रहे हो, ऐसे तो हम भूख मर जाएंगे। उसने कहा पिताजी आप तो गए थे वहां ये सुनाया था। तो उसने क्या कहा कि आज चलना मेरे साथ। कल दूसरे दिन फिर गया, गमछा फिर बिछा लिया, और बैठ गया। फिर कहता है कि देखो इस गमछे के अंदर जो धूल है वो आप झड़ा कर जा रहे हो ना, तो इसी प्रकार जो आप यहाँ सुन रहे हो, यहाँ का सुना यही छोड़ चलो, यहाँ की रही यहाँ, वहां की रही वहां। गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास। और थोड़े समय के बाद ऐसा उसकी दुकान पर मौका आया कि एक चोर आया और दोनों की आंख लग गई। जितना उसने 20 दिन में कमाया वो सब चोरी करके ले गया। वो भले ही उसको लगेगा कि मैं बेईमानी, 4 दिन की चांदनी होती है, लेकिन कर्म का फल तो उसे खाना पड़ेगा ना। उसे कर्मों पर अटेंशन तो रखना ही चाहिए, क्योंकि उसको किसी से नहीं डरना है, पर भगवान से तो डरना चाहिए ना। बेईमानी कोई दूसरे के लिए थोड़ी होती है, ईमानदारी और बेईमानी अपने लिए होती है। मैं तो उसका खराब हो गया, भले ही वो कितना पैसे वाला हो जाए। ये सच है कि आज की दुनिया में जो झूठ बोलते हैं वो राजगति करते हैं, और जो सच है वो कसौटी पर कसा जाता है। पर सच को कौन पहचानता है? वो परमात्मा के खाते में नजदीक रहते हैं, प्यारे होते हैं उनके।
बहुत से लोग हैं जिसके पास आध्यात्मिक ताकत नहीं है, और बहुत अपने अपने तरीके से हर आदमी अपना जीवन निर्वाह करते हैं, कोई चोरी से, कोई झूठ से, कोई फरेबी से, कोई भी किसी तरीके से। उस बीच में उन सब के संपर्क में आने वाला एक व्यापारी होता है जिसको उसका सामना करना पड़ता है, और उस बीच वो सच्चाई की कसौटी में जाए कि झूठ की कसौटी में जाए कि मुनाफे की कसौटी में जाए, उस कसौटी को मापते मापते वो इतना खुद दुखी हो जाता है कि वो समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए। उसके बारे में आपका क्या विचार रहेगा?
वो सबके बीच में अपना बिजनेस करना है, लेकिन व्यापारी को ऐसी समझ लेनी है जिससे वो सबके बीच में रह के व्यापार भी करे और मुनाफा भी करे। मुनाफा उतना लोग की गठरी नहीं बांधे, लेकिन जितना मुझे अपने परिवार को चलाने के लिए जरूरत है, जितना चाहिए उतना। लेकिन जो लोग खराब गलत काम कर रही है और गलत रूप से चला रहे हैं, रियली में जिस व्यापारी को उन बातों से तकलीफ होगी तो वो व्यापारी उन बातों की उस चक्कर में नहीं जाएगा, पास भी रहेगा और दूर भी रहेगा, अपना काम करने के लिए उससे बात करेगा, मिलेगा, लेकिन उसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं आए इससे वो बचा रहेगा। और वो एक ऐसी शिक्षा के अंदर जाएगा जो अपने मन को परमात्मा में लगाएगा, आध्यात्मिकता में। हमारे पास ऐसे व्यापारी हैं आज यहाँ भी बैठे हैं जो व्यापार कर रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं, परिवार को भी चला रहे हैं, लेकिन उनको इस प्रकार से शांति नहीं है कि हम किसी कोई चोरी से कमाता है, कोई कैसे कमाता है, तो उनके बीच में रह के हम भी ऐसे बन जाए। वो ऐसा नहीं बढ़ेगा। जो ऑनेस्ट है, ईमानदार है, वो अपनी रास्ते में रहेगा, उसको ऊपर उनका प्रभाव नहीं आना चाहिए। आपका प्रभाव अच्छाइयों का उसके ऊपर जाए, ऐसा अच्छा आप बनो, तो अच्छे रूप से जो आप व्यापार करोगे और जितनी उससे हमारी कमाई है उसके पास संतुष्टता होनी चाहिए। कहते गौधन, गजधन, बासधन, रतनधन, सावधन धूर समान जब आवे संतोष धन। उसको संतोषी बनना चाहिए। आज माताएं भी क्या करती हैं, भाई भी करते हैं, संतोषी माता का व्रत करती है, लेकिन संतोष है नहीं। जितना कमाता है चलो चोर से भी मिल जाओ, बुरे व्यक्ति से भी मिल जाओ, पैसा तो आएगा, पर वो मन में भावना अच्छी नहीं है। जितना मुझे जरूरत है उतना ही कमाना है अपने बीवी बच्चे परिवार के लिए, और उतना ही उनसे संपर्क रखना है, ज्यादा ना घुसाना है ना घुसना है ऐसे लोगों के बीच में।
मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस करता हूँ और स्पिरिचुअल लाइन में मैं हूँ, लेकिन ऐसे हो जाता है कि जब घर में रहता हूँ तो स्पिरिचुअल लाइन में पूरा हो जाता हूँ, जब बाहर चला जाता हूँ तो उसमें उतर जाता हूँ। उसमें से क्या करूँ थोड़ा बताइए।
इसका मतलब है कि आप स्पिरिचुअल लाइन में पूरे नहीं, इसलिए आप घर में आते हैं, आपकी स्त्री जाती है आध्यात्मिकता में, तो आप थोड़ा उसको साथ दे देते हैं। लेकिन बाहर जाते हैं तो खराब लोगों का संग का प्रभाव आपके ऊपर आ जाता है। जब आप स्पिरिचुअल लाइन में लीडर बन जाएंगे और दृढ़ता आपके जीवन में आ जाएगी, आपकी स्त्री से भी ज्यादा आप पक्के हो जाएंगे, तो आप चाहे बाहर की दुनिया के किसी कोने में घूमिए, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा और आप किसी तरफ ढलेंगे नहीं, अपनी बात में आप दृढ़ रहेंगे। आज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर भी कितने व्यापारी लोग हैं जो छोटी आयु से घर में भी जाते हैं, बाहर जाते हैं, दुनिया में घूमते हैं, चारों तरफ जाते हैं, पर उनको कोई बदल नहीं सकता है, कोई ऊपर नीचे ढला नहीं सकता है। हम भी ऐसे हैं दृढ़ता में कि कोई भी दुनिया की शक्ति हमको अडिग नहीं कर सकती है, क्योंकि दृढ़ता होनी चाहिए सब चीज में। ये थोड़ी के स्त्री के पास आए तो आपने थोड़ा सा स्पिरिचुअल बातें सुन ली, बाहर गए फिर उसके रंग में रंग गए, वो तो वो ही हो गए, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जिधर गए उधर चल पड़े। बेपहदी का लोटा जिसको कहते हैं, लुढ़कने वाला, वैसा नहीं होना चाहिए। एक अच्छे व्यापारी को अपने जीवन को बहुत स्ट्रांग बनाना चाहिए अंदर से, और जीवन के अंदर बहुत एक दृढ़ता भी एक मूल्य है, शक्ति है, सहनशीलता भी शक्ति है, वो सब आपके अंदर होना चाहिए।
दीदी हमारे पास आज समय इतना ही है, हमको कार्यक्रम ही रोकना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपना बहुमूल्य समय से कुछ समय निकाले, यहाँ पर अपने प्रश्नों का समाधान खोजने इस मंच पर आए, इसके लिए शुक्रिया।